ओम शांति। अभी अभी हम सभी ने बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी है और बाबा ने कहानी सुनाते हुए बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं हम सबको दी है। आप सब भट्टी में आ गई हैं बहने, आप सभी को देखकर मुझे पहला संकल्प आया कि अब तक बाबा का ये ज्ञान सरोवर सुशोभित था डबल विदेशियों से और अब सज गया है आप सभी से। बहुत अच्छा है, चारों ओर खुशी का माहौल। मैं सोच रहा था अभी आते आते बाबा ने कहा इस मुरली में कि अपने श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप रहो, कितना बड़ा भाग्य है। तो मैं सोच रहा था कि भगवान ने हमें रहने के लिए कैसा सुंदर स्थान दिया है, सुंदर बाह्य दृष्टि से ही नहीं, लेकिन ऐसा स्थान जिसमें एक साथ हजारों महानात्माओं का निवास हो, खाने के लिए ब्रह्मा भोजन, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जिसकी हमारे पास गणना नहीं है हम सभी को प्राप्त है। मेरा एक प्रश्न है पहले आप सभी से और आप उसको अपने चिंतन का विषय बनाएंगे अपनी भट्टी में, और वो है कि जीवन में त्याग करने के बाद समर्पणता एक बहुत बड़ा त्याग है। बहुत बड़ा न कह के हम कहें सबसे बड़ा त्याग, सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना कुछ नहीं रहा। ऐसे संपूर्ण त्याग के बाद जीवन में संपूर्ण संतुष्टता हो जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाबा हम सभी को जिस ऊंची स्थिति पर ले जा रहा है वो हम सब बाबा की मुरलियों से बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी मंजिल बहुत बड़ी है, बड़ी दूर है। बाबा उसे सहज कह देता है क्योंकि उसको प्राप्त करने का मार्ग सहज है, लेकिन वो मंजिल बहुत दूर है। उस मंजिल तक जाने के लिए क्या हमारे पास काफी स्पीड है, पहुंच जाएंगे हम, ये सभी को अपने से बात करनी है। इस भट्टी में सेवाओं में रहते हैं सभी बहने सेंटर्स पे, और यहाँ वहां भी है, लेकिन यहाँ बहुत अधिक चांस है अपने से बात करने का, अपने को देखने का, अपनी उन्नति के बारे में सोचने का। मैं बाबा की इस मुरली के एक विशेष महावाक्य पर आप सभी का ध्यान खिंचाऊं और उसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है हम सबके जीवन का। बाबा ने हमें कहा ज्ञानी तू आत्माओं का महाशत्रु कौन? क्रोध। सबने अंडरलाइन कर ली है इस बात को, और क्रोध के स्वरूप भी गिनाए, कुछ बाबा ने गिनाए और कुछ और भी हैं जो हम सब रोज देखते हैं जानते हैं। ईर्ष्या द्वेष और घृणा तीन बाबा ने गिनाए, और एक बहुत ही कड़ा शब्द प्रयोग कर दिया, बाहर का क्रोध लाल पीला कर देता है और अंदर का क्रोध काला कर देता है, आत्मा को काला कर देता है, खुशी को नष्ट कर देता है, उदास करता है, पश्चाताप की ओर ले जाता है, शक्तियों को नष्ट करता है। ईर्ष्या से बचना, घृणा से बचना। लोग पूछते हैं ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है? क्या अंतर है? प्राय ये शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष, लेकिन अंतर तो है। क्या अंतर होगा? बिल्कुल सहज भाव से आप उत्तर देंगे, आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। सहज भाव से क्या अंतर होगा? ईर्ष्या अंदर से होती है और द्वेष बाहर से। ये तो अंदर की बातें हैं, बाहर से तो वो क्रोध होता है जो हमारे यहाँ तो खैर नहीं होता पर बाहर ज्यादा होता है। बाहर से क्रोध, हाथ पैर भी जिसमें चलने लगते हैं, ईर्ष्या दो के बीच होती है, एक के मन में होती है दूसरे के लिए, गुण देखकर दूसरों को मिलता हुआ भाग्य देखकर दूसरों की प्राप्तियां देखकर, और इस ईर्ष्या के बाद अगर इस ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप शत्रुता पैदा हो जाए तो द्वेष। ईर्ष्या पहली चीज है, ईर्ष्या अगर शत्रुता बनाने लगे तो उसको कहते हैं द्वेष। घृणा के बारे में मेरा अपना अनुभव अब से 30 साल पहले से एक चीज से प्रारंभ हुआ, मैं अपनी क्लासेज में कहीं कहीं वो सुनाई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे यहाँ थे मधुबन में, वो मुझे कहते थे, हम बहुत छोटे थे, वो कहते थे कि हमने सीखा कि अगर हमारे मन में संसार की एक आत्मा के लिए भी घृणा है तो हमारा योग टूटेगा। घृणा संबंधों को तो बिगाड़ती है, स्नेह को नष्ट करती है, स्नेह के विपरीत चीज है, और हमारे कार्य व्यवहार में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कराती है, सहयोग के बदले विरोध पैदा करती है। जिस व्यक्ति के लिए हमारे मन में घृणा है वो विरोध करेगा, सहयोग नहीं। और अगर हम इस विरोध को सहयोग में बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी घृणा को समाप्त करना पड़ेगा। इस संगम युग पर रहे हुए समय में हम सभी को अपनी दृष्टि में एक परिवर्तन कर लेना चाहिए संसार को बदलने के लिए, और अपने संसार को बदलने के लिए अपनी सेवाओं को तेज गति देने के लिए, आप अपने सेंटर्स में अपनी सेवाओं की स्पीड बढ़ाने के लिए इस एक संकल्प का प्रयोग करके देखें। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा कल्याणकारी और उपयोगी है कि आपके साथ जो भी भाई बहने हैं, चाहे क्लास में आने वाले या साथ रहने वाले, वो सब महान आत्माएं हैं, ऐसा दृष्टिकोण रखकर देखें। इससे सेवा कितनी स्पीड पकड़ती है वो अनुभव हो जाएगा। घृणा और स्वार्थ सेवाओं में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बहुत बड़ी। बहुत जगह बहुत सेवाएं होती हैं, मेहनत होती है, सफलता होती है, स्वार्थ और घृणा उसको नष्ट कर देती है। करने वाले थकते हैं स्वार्थ और घृणा के द्वारा जब सेवा पर पानी फिरता हुआ देखते हैं। सब महान आत्माएं हैं, ऐसी दृष्टि बनाने से सेंटर का वातावरण कितना आकर्षक होता है और सेवाओं की स्पीड कितनी तेज होती है, ये आप अपना एक्सपेरिमेंट करें। जो भी चाहते हैं करना 3 मास के लिए करके देखें, सेवा निर्विघ्न कैसे हो जाती है और तेजी से कैसे होती है। बाबा ने क्रोध को जीतने की बात पहले भी कही है, सदा कही है, अब फिर उसको अंडरलाइन किया है। बाबा नहीं देखना चाहते उसके बच्चे क्रोध करते हों, बाबा ने नुकसान गिनाए, और हम सब भी रोज इसके अनुभवी हैं। मैं हमेशा अपने इस ब्राह्मण संसार को देखकर एक बात सोचता हूं, साक्षी हो के जब देखते हैं तो कुछ लोग कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में कहा, कोई भी इच्छा क्या है, इसी मुरली में कोई भी इच्छा लोभ है। मान की इच्छा एक ऐसी इच्छा है जो हर व्यक्ति के पास है, शायद इस संसार में कोई उससे मुक्त हो। केवल मुक्त वो हैं, मान की इच्छा से मुक्त कौन है? हैं कुछ आत्माएं हैं कौन है? जो स्वमान में है। ये बात भी ठीक ही है। जो योगी हैं, स्वमान भी योग का हिस्सा है, जिन्हें ईश्वरीय आनंद इतना ज्यादा प्राप्त हो जाता है कि ये मान सेवाओं से मिलने वाली प्रशंसा बहुत छोटी दिखाई देती है, सोचना नहीं पड़ता, ये सब बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। क्रोध जहां है वहां सम्मान नहीं। सम्मान तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, स्वमान से मिलता है, स्थिति से मिलता है, व्यवहार से मिलता है। संसार में तो लोग कहते हैं दो तो मिलेगा, तो हम अपने क्रोध को जीतें। ये बात तो कोई नई नहीं कही गई। मैं सबको ये कहूंगा कि हम एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे हमारा क्रोध दिनों दिन कम हो। एक्शन प्लान कहते हैं इसको लोग। आजकल सेवाएं चलती हैं ज्ञान सरोवर में, तो भिन्न भिन्न तरह की सेवाओं में पहले विचार किया जाता है ये करना है, फिर उसको करने का प्लान बनाया जाता है, एक्शन प्लान। तो हम क्रोध को जीतने का एक प्लान बनाएं। क्यों हमें क्रोध जीतना है इसके बारे में हमारा चिंतन हो, और उसके बारे में सबसे अच्छा चिंतन और अनुभव यह होना चाहिए कि क्रोध करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बोलो। जिस दिन हमें क्रोध आ जाए उस दिन बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एकदम जो हमसे जुड़ी हुई है, खुशी गायब, एकाग्रता भंग, योग नहीं, सेवाओं में सफलता नहीं, जीवन में संतुष्टि नहीं, शक्तियां नष्ट। हम बहुत अच्छा योग लगाते हों, एक बार का क्रोध हमारी बहुत सारी शक्तियों को नष्ट करता है। जब हम पढ़ते थे तो हमें एक बात पढ़ाई गई, बहुत अच्छी लगी हमें, ध्यान गया इस बात पर कि अगर कोई व्यक्ति एक घंटा क्रोध की स्थिति में रह जाए, क्रोध तो थोड़ी देर होगा लेकिन उसका इफेक्ट, अगर एक घंटे तक क्रोध की स्थिति में रह जाए तो उसकी उतनी शक्तियां नष्ट हो जाती है जितनी 18 घंटे दौड़ लगाने में होती हो। 18 घंटे दौड़ना बहुत भारी काम होता है, उसमें शरीर की और ब्रेन की शक्ति नष्ट होती है। अब हमें पता लग गया कि क्रोध से शरीर की, ब्रेन की और आत्मा की, तीनों की शक्तियां नष्ट होती हैं। आत्मा को भी तीनों भागों से देखें, मन की शक्ति नष्ट होती है, बुद्धि का विवेक नष्ट होता है, संस्कारों की शीतलता नष्ट होती है। तो एक बहुत अच्छे कर्तव्य के लिए हम चल रहे हैं, अब हमें जरा आगे का सोचना है। समय कैसा आ गया है हमारे सामने? आप लोग समाचार सुनते होंगे, भविष्यवाणियां सुनते होंगे, वो एक दूसरी बात है, पर बाबा के स्थापना के कार्य की गति को देखते हुए कौन सा समय आ गया है? विनाश का। विनाश एक दिन में तो नहीं होता, 8-10 साल लगते हैं इसको। इसलिए विनाश के समय की तैयारी करने के लिए हमें तैयारी करने के लिए सबसे पहली तैयारी स्वयं को शक्तिशाली बनाने की है। विनाश की हम सब कल्पना करते हैं, विनाश में क्या होगा, जो कुछ दिखाई देता है वो सब नष्ट होगा। और मैं बाबा की मुरलियों से ऐसा समझा हूं कि एक बार इस जीवन में अपनी 5000 साल की यात्रा पूरी करने से कुछ समय पहले हर एक आत्मा इस संसार में अकेली हो जाएगी, बिल्कुल अकेले, सभी आधार समाप्त। और उस टाइम हर आत्मा अपने को बिल्कुल स्पष्ट देख पाएगी, हम कहां हैं, क्या है, हमने क्या किया, क्या नहीं किया है। हमें शक्तियों की बहुत जरूरत है, सेवाओं में विघ्नों को नष्ट करने के लिए, आपसे संबंध संपर्क ठीक रखने के लिए, बाबा ने हमें बहुत अच्छा काम दिया है जिसका एक्शन प्लान सभी को बना लेना चाहिए कि गुणों और शक्तियों को बोलो अपना निजी संस्कार बनाओ। बिल्कुल बात तो क्लियर है, उसमें कुछ और जानने की तो बात नहीं। जैसे बुराइयां हमारे जीवन में नेचुरल संस्कार बन गई हैं, आज बाबा ने कहा आज या कल कि रावण को पराई चीज को अपना खजाना बना लिया है। अब नहीं, इसी मुरली में था बाबा की, रावण की चीजों को पराए खजाने को अपना खजाना बना लिया है। अब जो अपना है ईश्वरीय खजाना उसको अपना खजाना बनाओ। तो ये काम दिए हैं बाबा ने बहुत अच्छे के, नेचुरल रूप से हमारे संस्कार गुण और शक्तियों से युक्त होकर चले ताकि हमें कुछ करना न पड़े, सहज स्वाभाविक रूप से हम गुण और शक्तियों का स्वरूप बने। तो उसमें एक संकल्प मैं आपके सामने रखता हूं, उसको अपना निजी संस्कार बनाने से बहुत सारी चीजें संस्कार बन जाती हैं। वो है सरलता, सहज भाव से काम करना, जीवन जीना, परिस्थितियों में रहना, सेवाओं में रहना, भागदौड़ के जीवन में रहना सहज भाव से। पीछे हमारे यहां नीचे शांतिवन में भी और ज्ञान सरोवर में भी मधुवन में भी हमने अनेक बार ये प्रयोग कराए, सबसे बहुतों ने किए कि काम चाहे कितना भी फास्ट गति से किया जा रहा हो मन शांत हो, खूब तेज भागदौड़ हो रही हो। शांतिवन के लास्ट एक मास के दिन है ये, बहुत तेजी से काम चल रहा था और सब थक जाते थे। सवेरे 8 बजे से रात के 8-9-10 बजे तक काम होता था, बहुत थकते थे। तब सब ने ये अभ्यास किए थे कि खूब फास्ट गति से काम काज होते भी मन को बिल्कुल ही शांत करके रखना, तो पहला अनुभव था थकान बहुत कम हुई, कुछ स्थिति का अनुभव कर सके, कर्म कॉन्शियस नहीं हुए, याद रहा हमें क्या क्या करना है। तो इस एक गुण को अपनी प्रैक्टिस में लाके संस्कार बना ले। हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह संस्कार बनता है किसी भी बात को बार बार करने से, प्रैक्टिस में लाने से। अब हम इस प्रैक्टिकल विषय पर आ जाए कि हमें क्रोध को जीतना है, कैसे जीतेंगे। जीतना तो है, जब हम वापस घर जाएंगे तो जीत कर ही जाएंगे, परंतु हम शरीर छोड़ने से एक दिन पहले जीतेंगे, एक साल पहले जीतेंगे, या अब से ही जीतेंगे। जितना समय जीतेंगे उतना आनंद का अनुभव होगा और वही हमारा बहुत बड़ा खजाना है। तो जरा हम ये सोचें कि क्रोध क्यों आता है, बहुत गहराई से कुछ 4-5 मुख्य बातें निकालकर उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाएं, एक अपना चार्ट बना लें जिससे उसकी गति को, उसके फोर्स को कम करें। क्यों आता है क्रोध? 5 मुख्य कारण जो बहुत प्रैक्टिकल हों। क्रोध है तो आत्मा के अंदर, और क्यों है क्रोध? क्रोध का बीज, और बोलो क्रोध किसे ज्यादा आता है और किसे कम आता है? सब उत्तर ठीक हैं ये, बिल्कुल, और बोलो। और मैं सब सुने, और बोलो। इच्छा और कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं, परंतु इसके भी बीज में चले जो कमजोर हैं उनको क्रोध ज्यादा, जो शक्तिशाली हैं उनको उतना ही कम। ठीक बात है ना? कमजोर कोई तो गुस्सा ज्यादा आता है, वैसे बीमार हो गए हो, शरीर भी कमजोर हो तो ऐसे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, इंतजार नहीं होती, भोजन आने में 5 मिनट लेट हो जाए तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो एक कर्म क्षेत्र पर चिड़चिड़ापन आता है। अब क्रोध को छोड़ दे, क्रोध तो बड़ा रूप है, हम सोच ले क्रोध अज्ञानियों का विषय है और हमारा विषय है चिड़चिड़ापन। ठीक है, और भी खतरनाक है। तो कर्म क्षेत्र पर चिड़चिड़ापन आता है। कोई अगर बार बार टोकता रहे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल चीज, आप काम कर रहे हैं और आपके बड़े आपको बार बार टोकते रहे, आपकी इच्छा के भावनाओं के विरुद्ध बोलते रहे। एक तो टोकना होता है कि जल्दी करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। एक है कुछ और ज्यादा बोल दें, और ज्यादा तो आप जानते ही हैं, बोलते भी होंगे सब, तो कैसे ऐसे को, ऐसे क्रोध को जीतेंगे। तब झंझनाहट होती है, झुंझलाहट आती है कि काम करने दो, चुप रहो, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बोलो। करते तो होंगे सभी, ऐसे तो कोई नहीं है जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सभी करते हैं, बोलो। शांति में रहना चाहिए। तो हमें अपने को बहुत सारे कार्यों में क्रोध को जीतने के लिए एक बात याद रखनी चाहिए। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बता दूं, यहां तो हमने उस पर क्लासेज की हैं एक दो, पीछे दादी से किसी की चर्चा हो रही थी मीटिंग में, ग्रुप में,
तो कुछ बातें प्लान से, टॉपिक से बाहर की चली आई और दादी ने उनके उत्तर में एक बात कही,
कहा कि देखो हम बड़े हैं। किसी ने कहा, दादी आप बड़ी हो, आप इतनी सब बातें क्यों सुनती हो, आपको नहीं सुनना चाहिए, हट से उन्हें जवाब दे देना चाहिए। आप क्यों इतना सहन, दादी ने कहा सहन भी करते हैं हम तो बहुत, तो क्यों आप सहन करती हो। दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा ने हमें ये सिखाया है कि जो बड़े हैं उन्हें सुनना चाहिए, सहन करना चाहिए और समा लेना चाहिए। हम सोचने लगे कि देखो जो सबसे बड़े हैं वो सोच रहे हैं कि हमें सहन करना चाहिए, जिन्हें सहन करने की जरूरत नहीं है, और जिन्हें सहन करने की जरूरत है वो सोच रहे हैं कि हम क्यों सहन करें। तो ये एक बहुत अच्छा रहस्य है, जिसको महान बनना है वो सुने, संभाले और सहन कर ले। इन तीन चीजों में हमारी महानताओं का सार छुपा हुआ है। जो न सुन सके उसको अवश्य क्रोध आएगा, क्योंकि सुनाने वालों का मुख तो हम बंद नहीं कर सकते, हम अपना मुख तो बंद कर सकते हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं कि सुनाने वाला न सुनाए, उसका मुंह बंद हो। पर अगर हम अपना मुख बंद नहीं कर सकते तो दूसरों के मुख पर हमारा कितना अधिकार है, है? तो एक जब कर्म में बातें सुनने को मिलती हो, या हमसे कोई गलती हो गई हो तब हमें सुनने को मिलता हो, तब तो हमें सहज भाव से सुन लेना चाहिए, क्योंकि हमसे गलती हो गई है, तब भी गुस्सा आ जाता है कभी कभी। और अगर हमने गलती न की हो और सुनाने वाला सुना रहा हो, तब गुस्सा आएगा या नहीं? हमने गलती न की हो, बिल्कुल निर्दोष हम, और सुनाने वाला सुनाता है, गुस्सा आएगा। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं गुस्सा आए तो कर लो, अंदर न रखो, अंदर रखोगे तो ब्रेन पर बुरा इफेक्ट आएगा। और बाबा कहते हैं कि गुस्सा आए तो बाहर न निकालो। किसकी बात मानी जाए, बाबा की माननी पड़ेगी। तो गुस्सा आ रहा है, हम उसको दबा दें या परिवर्तित कर दें, हम उसको परिवर्तन करना सीखें। क्योंकि गुस्से को अगर दबाया जाता है तो क्या रिजल्ट होगा, डिप्रेशन, उदासी। भावनाओं को अगर दबा दिया जाए, किसी को कह दिया जाए कि चुप रहो, बोलना नहीं है, चाहे तुम्हें जितना सता दिया जाए तुम्हें बोलना नहीं है, खिड़की बंद रखो अपनी, ऐसा कहने वाले हैं इस संसार में सब, हमारे ब्राह्मण संसार में भी हैं और संसार में तो कभी नहीं है उनकी, दबा दिया जाए, बिल्कुल चुप रहना है, जिस हाल में रखा जा रहा उसी हाल में रहना है। बाबा की इस महावाक्य का कईयों ने दुरुपयोग कर दिया। बाबा ने कहा कि मैं जैसे रखूं, जहां रखूं, जो खिलाऊं, जैसे बैठाऊं, वही करना है। तो कई लोग इसको अपना आधार बना के दूसरों को दबा देते हैं कि नहीं, जैसे कहा जाए वैसे ही रहना, चुप रहना, अगर मुंह खोला तो खतरा हो जाएगा। क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसा बहुतों के साथ हो चुका है, आत्माएं मर गई हैं शरीर में जिंदा रहते हुए। खुशी मर गई, उमंग मर गई, जीवन के लिए उत्साह और नशा मर गया, और ये मैं तो इतना ही कहूंगा बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा अगर हो जाए तो हमें किस तरह अपने क्रोध को टर्न करना चाहिए, क्या विधि है? क्रोध तो आएगा, किसी की भावनाओं को अगर बरबस दबा दिया जाए तो क्रोध तो उसको आएगा, लेकिन क्रोध को भी दबाया जा रहा हो तो क्या करना चाहिए? खुशी गुम ना हो, बोलो। इसमें हमें काम आता है, बाबा ने आजकल में ही इसी साल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी और सरल बातें हम सबके सामने रखी हैं, और उसमें सबसे सुंदर बात पूरे संगम युग की, चारों युगों की है, बाबा को यूज करो, इसके भिन्न भिन्न अभ्यास अनुभव जीवन में करने चाहिए। बाबा साथ है, उसको यूज करो, प्रयोग करो, उसका अधिकार से उसका प्रयोग करो, तो बहुत सारी जीवन की परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। और क्रोध क्यों आता है? क्रोध क्यों आता है और मनुष्य को, बोलो भाई, बोल दो, चलो भाइयों को ज्यादा आता है, बोलो। कोई नुकसान कर देता है, कोई उल्टा सुल्टा बोल देता है। एक बहुत अच्छा अभ्यास अपने क्रोध को जीतने का हमें करना चाहिए, वो थोड़ा बड़ा अभ्यास है, परंतु बहुत बहुत जीवन में रॉयल्टी लाने वाला अभ्यास है। कहावत भी है, क्रोध को धैर्यता से जीता जा सकता है, क्रोध को क्षमा भाव से जीता जा सकता है, ये दो शस्त्र है क्रोध की अग्नि को नष्ट करने के लिए। एक प्रैक्टिकल में अपने जीवन में हमें धीरे धीरे करके प्रयोग करना चाहिए कि किसी भी बात पर, कोई भी घटना हो जाने पर, कोई भी दुर्व्यवहार हो जाने पर, कोई हमारे ऊपर कोई दोष लगा दे, हमने कुछ न किया और दोष आरोपित कर दे, तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं, जो तुरंत हम प्रतिक्रिया करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत सब कुछ कर देते हैं, वो तुरंत ना करके थोड़ा सा ठहरने की आदत डालें। हो सकता है ये, ठहरना सहज काम नहीं होता। कोई आपको ऐसी चुभने वाली बात कह दे तो ऐसी चुभने लगती है कि रहा नहीं जाता जब तक अच्छा न सुना दिया जाए, जरा संतुष्टि नहीं होगी। अच्छी तरह मन की बात कह दी जाए, आगे पीछे की भी कह दी जाए, तब तक संतुष्टि नहीं होती। परंतु इमीडिएट रिएक्शन न हो, तुरंत प्रतिक्रिया हम न करें, ऐसी धैर्यता हमारे पास हो, उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, बोलो क्या होना चाहिए? उसके लिए चाहिए आत्मविश्वास, स्वयं में विश्वास, स्वयं की शक्तियों में विश्वास, स्वयं के स्वरूप में, भाग्य में विश्वास, स्वयं की सत्यता में विश्वास। कोई हम पे कितना भी दोष आरोपित कर रहा हो, लेकिन सत्यता की शक्ति तो सबसे बड़ी है, लेकिन इसमें विश्वास नहीं रहता। क्यों नहीं रहता विश्वास? सत्यता की शक्ति में विश्वास रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में असत्य की विजय और सत्य की हार देखते आ रहे हैं, जीवन में 10 बार 20 बार देख चुके हैं, सत्य की हार असत्य की विजय उल्टा देख लिया है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य की विजय असत्य की पराजय, परंतु दिखता उल्टा है। सत्य दिखता है, जो हो रहा है वो तो सत्य है, दिख रहा है कि असत्य हार रहा है। कई लोग पूछते हैं कि चालाक लोग जीत रहे हैं, ब्राह्मणों में पूछते हैं, चालाक लोग अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं झूठी भी सच, और हम भोले भाले छोटे सरल चित्त ज्ञान योग पे ध्यान देने वाले सत्यता में विश्वास रखने वाले, हमारी कोई सुनता नहीं, सत्य की कोई सुनता नहीं, सत्य छुप कर रह जाता है। लेकिन सत्य की सुनवाई क्या है? जरा गहराई से देखें, सत्य की विजय है कि जहां सत्य है वहां आत्मा में शक्तियां और खुशी है, और जहां असत्य है वहां की खुशी बहुत क्षणिक है या परमानेंट है। सबने कहीं ना कहीं जीवन में अनुभव किया होगा, जहां असत्य को हमने दबाकर उसको सत्य दिखा दिया बड़ों को, और हम सेफ हो गए और बहुत खुश हुए कि बच गए इस बार, तो बच गए, बचे नहीं, हमारी आंतरिक शक्तियां तत्काल नष्ट हो गई, एक और पाप भी हो गया, खुशी हमने नष्ट कर ली। और एक समय आएगा, बिल्कुल हमारे सामने वो समय आ रहा है, जब कोई भी सत्य किसी से छुप नहीं पाएगा। मैंने अभी अभी 2-4 दिन में कुछ थोड़े थोड़े से अनुभव देखे। एक बहन ने किसी भाई के लिए किसी बहन के दबाव में आकर उल्टा पत्र लिखा, एक मुझे लिखा, एक दादी को लिखा, एक और को लिखा, क्या वो भाई ऐसे ऐसे करता है किसी बहन के दबाव में आकर। मैंने उस पत्र का छोटा सा उत्तर बहुत अच्छे शब्दों में इस बात को भूलते हुए खत्म कर देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उसको लिख दिया। वो पत्र उसको मिला नहीं। वो सोचती रही कि भाई साहब मेरे से नाराज होंगे, मैंने ऐसा पत्र लिखा, लेकिन मैं तो उसको एक अच्छा पत्र लिख के मुझे भूल गया। कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले, अभी 6 मास पहले उसको वो पत्र पता नहीं कहां से मिल गया। वो पत्र बहुत अच्छा था, छोटा सा ही, वो उसने पढ़ा, और पढ़ते ही अब उसको उसके अंदर में चुभने लगे कांटे की तरह वो बात, और चुभने ये लगी किसी आत्मा को बदनाम करने के लिए किसी के दबाव में आकर ऐसा पत्र लिख दिया। तो वो मुझे ढूंढ रही है, मैं नीचे ऊपर मिलन नहीं हो रहा। वो कहती मुझे आप माफ करो। मैंने कहा क्या हुआ, गलती क्या हो गई, मेरे को तो भूलती है चीजें, कल की भी आज भूल जाती है। कहा 4 साल पहले की बात है, मुझे कुछ याद नहीं, मुश्किल से मुझे थोड़ा सा कुछ याद आया, कुछ हुआ था। तो वो इतनी माफी मांगे कि मुझे माफ करो, नहीं तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा योग नहीं लग रहा, 6 मास हो गए हैं। ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, योग न लगने की और नींद न आने की, मुझे अनुभव हुआ, ये मुझे महसूसता हुई कि आत्माएं कोई भी गलती करने के बाद सुखी नहीं हो सकती। कोई कितना भी किसी की गलत रिपोर्ट कर ले, अगर हम अपनी अच्छी स्थिति में हैं तो हमारा कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है, उनका ही बिगड़ेगा जो गलत कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थवश या ईर्ष्यावश या बदले की भावना के वश, या ऐसा भी कहें पिछले कुछ पाप कर्मों के वश, दूसरों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा वैसा उल्टा काम करते हैं। यह हर संगठन में द्वापर युग से होता आया है। आप सभी ने कहानी सुनी होगी अंगुलीमाल डाकू की। वो अंगुलीमाल डाकू क्यों बना? वो तो बहुत बड़ा विद्वान, बहुत होशियार स्टूडेंट था, और उसकी तो कीर्ति सारे संसार में फैलने वाली थी, लेकिन उसके ही साथी ईर्ष्यावश उसको बदनाम करते थे और आखिर इतनी रिपोर्ट कर दी कि गुरु ने उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और वो अब सोच रहा था जाते जाते कि मैं क्या करूं, समाज तो स्वीकार नहीं करेगा अब, क्योंकि समाज में तो तब ये बात फटाफट फैल जाती थी। तो ब्राह्मण जो विद्या विद्वान बन के विद्या प्राप्त करके आ रहा है, उसको अपमानित करके गुरु ने निकाल दिया है, तो जा रहा था क्या करूं। आपने सब कहानी सुनी है, रास्ते में किसी डाकू ने उस पे वार कर दिया, वो ताकतवर तो था ही, उसने उसकी तलवार छीन ली और कहा बस यही मेरा मार्ग है, अब उस समाज से मैं बदला लूंगा जिसने मेरे साथ अन्याय किया है। तो देखो, एक मनुष्य जो महान बनने जा रहा था उसको डाकू बना दिया ईर्ष्या द्वेष ने। तो हमें इन चीजों पर क्रोध नहीं करना है और इस सत्यता को विश्वास में रखते हुए कि हमारी सत्यता हमारे पास है, हम उसे जानते हैं और जिसे हमें बताना है वो भी जानता है, इसके लिए किसी की उल्टी सुलटी बातें सुनकर अपने क्रोध को बाहर निकाल देना, अपने मन को उत्तेजित कर देना, अपने अंदर क्रोध समा के रखना, इससे हमारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। तो ये एक दूसरी बात है जो क्रोध को जीतने में हमें बल देगी, आत्मविश्वास, अपने को पहचानना बहुत बड़ी चीज है। मैंने 74 में कभी अव्यक्त वाक्य एक सुना था, मुझे जिंदगी भर याद रहा है कि तुम्हारी अडोल स्थिति तब आएगी जब तुम स्वयं को संपूर्ण रूप से जान जाओगे। बस यही रहस्य है अडोलता का, निर्भय बनने का, संतुष्ट होने का, एक रस रहने का। अपने को जानते चलें तो किसी दूसरे की बात हमें परेशान नहीं करेगी। तो इस तरह तुरंत प्रतिक्रिया करने की आदत, ये संस्कार जो जन्म जन्म का हमारा बना हुआ है, इसको हम जरा ढीला करते चलें। एकदम से तो ये नष्ट नहीं होता, परंतु धीरे धीरे इसको ढीला करके हमें नष्ट करना है। एक और चीज जिससे हम अपना और दूसरे का क्रोध समाप्त कर सकते हैं वो ये है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ आया है, आप सेंटर में दो बहनें रहती हैं, एक तीसरी आ गई, एक चौथी आ गई, भाई आए, हमें उन सबको सब कुछ सिखाना है, सिखाने का दृष्टिकोण और स्वयं सीखने की इच्छा जीवन के लिए बहुत सुंदर मंत्र है। जिन्हें हम सिखाएंगे वो जीवन भर हमारे सहयोगी रहेंगे, सम्मान रखेंगे, अच्छी भावनाएं रखेंगे। सिखाना, हमारे पास कोई भी आ रहा है वो परफेक्ट नहीं आया है, वो कुछ सीख कर नहीं आया है, उसके जैसे संस्कार थे उनको साथ लेकर आया है, इसलिए उनको सिखाना, वो एक गलती बार बार कर सकते हैं, उनको सिखाना ये हमारे विशाल दिल का एक स्वरूप है और ये होना ही चाहिए, तब हमें क्रोध बहुत कम आएगा दूसरों पर। अगर हम दूसरों को ठीक तरह से जानते चलें, दूसरों की कार्य क्षमता को, दूसरों में कितनी शक्ति है कार्य करने की, कितनी समझने की शक्ति है, विवेक शक्ति कितनी है, उनका बौद्धिक स्तर कितना है, वो क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते और क्या नहीं सीख सकते, वो एक बार बताने से सीख सकते हैं या उन्हें 10 बार बताना पड़ेगा या 10 बार से भी ज्यादा बताना पड़ेगा, हमें अपने को इतना ओपन करना चाहिए, इतना खोल देना चाहिए कि हम जितना समय भी हो दूसरों को सिखा सकें। इससे क्रोध समाप्त होगा। नहीं तो हम जानते हैं, एक व्यक्ति को हमने कुछ कहा, उसने नहीं समझा तो दोबारा बता देंगे, फिर भी न समझा तो गुस्सा आएगा, और अगर बार बार नहीं समझता तो हम कहेंगे तुम हमारे काम के नहीं हो, जाओ यहां से। तो हम भी सागर हैं बाबा की तरह, मास्टर सागर। बाबा को देखो कितने सालों से हमें सिखाता आ रहा है, कभी अपनी धैर्यता छोड़ी नहीं, या कह दिया कि हजार बार तुम्हें सिखा दिया क्रोध न करो, अब भी तुम करते हो, अब धर्मराज के द्वारा ही सिखाऊंगा, ऐसे तो नहीं कहा। फिर कहा छोड़ो इसे, ये शत्रु है, महाशत्रु है, क्योंकि उसे ये विश्वास है कि इन्होंने ही छोड़ा है, यही फिर से छोड़ेंगे। तो इस तरह अपने जीवन को देखकर किसी भी एक बात में जो हमें बहुत ज्यादा परीक्षा बनकर आती हो क्रोध के रूप में, उसको छोड़ने का एक प्लान बना ले, संकल्प रख लें, तो हमारी शक्तियां बचेंगी, हमारी खुशी बढ़ेगी और हमारा जीवन और निखरता चलेगा, हमारी सेवाएं बढ़ेंगी। ओम शांति। योग कर रहे थे यहाँ, तो मैं तो गया था घूमने आज हनीमून पॉइंट बहुत दिन के बाद, मेरा पेट जरा खराब था तो मैं सोचा आज बैठूंगा नहीं, तो रास्ते में कार रुकी और दो आदमी उतरे मिलने आए मेरे से, एक सरदार और एक अंग्रेज, नहीं बाहर के, नहीं उधर हनीमून पॉइंट। तो फिर बात करने लगे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे, क्या है ये ज्ञान, कहाँ से दे रहे हैं आप, ये धर्म है क्या है, तो मैं उनको सब बताया। फिर मुझे साथ ले आए, मैंने कहा आइए तो चलो आपको एक 5 मिनट दर्शन करा दे जरा इधर, तो यहाँ ले आए हम। तो यहाँ माहौल बहुत सुंदर था, बहुत अट्रैक्टिव, तो पीछे उनको ले गया, मैंने कहा जल्दी करूं, मैं जल्दी कर रहा हूं, बैठ गए, बहुत आकर्षक वातावरण था। बाहर ले गया उन्हें, मैंने बताया ये हेडक्वार्टर्स है अपना और यहाँ से सब काम चलता है, इतने सेंटर हैं 70 देशों में। तो वो अंग्रेज जो था ना, वो कहता बैठते हुए कार में जाते हुए मुझे, फिर मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी आपके हॉल में, पीछे बैठ के मैंने सोचा कि मैं कुछ बुरे संकल्प करूं, लेकिन हुए ही नहीं, कितना अच्छा अनुभव है उसका। मतलब अंग्रेज लोग इस तरह से वाइब्रेशन के आते ही, मैंने यहाँ जैसे गैलरी में आए तो वाइब्रेशन बहुत अट्रैक्टिव थे, वहीं साइलेंस थी, मैंने कहा आप देखो यहाँ के वाइब्रेशन को फील करो क्या है यहाँ। फिर यहाँ आए तो उसने इस तरह वाइब्रेशन देखे कि ऐसा स्थान जहाँ बुरे विचार चाहते हुए भी पैदा नहीं कर सका मैं, बहुत अच्छा लगा उसको। बाहर से आए हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, वो गैस ये जमीन में तेल की खोज करते हैं, तो बहुत अच्छी लहर सभी की भट्टी की चल रही है, इसका प्रवाह तो जहां तहां फैल रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। जो सेंटर्स की टीचर यहाँ आई हुई हैं, वो इससे बहुत ज्यादा प्रेरित होकर जा रही हैं और ये समय की समीपता की पहचान है, समय बहुत समीप है। हालांकि हमारे पुरुषार्थ का संबंध समय से होना नहीं चाहिए, पर है अवश्य, कुछ लोग उसे समय पुरुषार्थ करा देता है और कुछ समय से पहले कर लेते हैं। मैंने सुनाया था शायद यहाँ उस दिन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेल होने वाले हैं 2000 से पहले पहले, वहां एक आवाज फैली है चारों ओर कि वहां ओलंपिक नहीं होंगे, इससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया देश नष्ट हो जाएगा। तो सभी ब्राह्मण जो बिखरे हुए थे उनमें फिर से यूनिटी आ गई है और सब तेज पुरुषार्थ में लग गए। ये वाणी भविष्य वक्ताओं की, ज्योतिषियों की नहीं, वैज्ञानिकों की है कि ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे छोटे मोटे देश 2000 तक डूब जाएंगे सागर में, इसलिए यहाँ ओलंपिक खेल नहीं होंगे। तो लोगों में एक प्रेरणा आई, आंतरिक जागृति हो गई है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की, और यहाँ मधुबन में भी सब में हो गई है। और मैंने आप सभी को, एंजल ग्रुप को उस दिन कुछ लक्ष्य दिए थे, सभी तो आ गए हैं लगभग, तो उसमें कि हम तो जन सरोवर में ऐसे करते हैं कि संडे को आधा घंटा रोज 8:30 से 9 रात को बैठते हैं, और उस ग्रुप में 50-60 भाई बहने हैं, कभी 80 भी हो जाते हैं, तो एक हफ्ते का एक पूरा प्रोग्राम दे देते हैं सभी को, एक धारणा की पॉइंट, एक स्वमान की, योग के कुछ अभ्यास, और सभी के सामने लक्ष्य रहता है कि एक हफ्ते में इतने घंटे तक सभी को पहुंचाना है क्रम में ही। यहाँ तो बैठना स्ट्रिक्ट किया है, अभी वहां बैठना स्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे जो सवेरे से हम बैठ सके बैठे,
बाकी कर्म में अपना करे। तो ये काम वहाँ 6 मास से चल रहा है, बहुत अच्छी लहर रही है और बहुत आत्माएं आगे निकली हैं पुरुषार्थ की रेस में, इसलिए वातावरण में काफी अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है। आप सभी ने महसूस किया होगा पिछले हफ्ते कि अपना योग का चार्ट अच्छा होने से कार्य कितना सहज पूरा होता है, महसूस किया? ये महसूस करने की चीज है कि योग श्रेष्ठ, काम सहज सफल, विघ्न उसमें आएंगे नहीं, थोड़े समय में ज्यादा काम हो जाएगा। जैसे स्लोगन था इकोनॉमी पर, बोल और कर्म में, बोल और संकल्प की इकोनॉमी कर्म में करेंगे तो काम जल्दी सफल होगा। तो आप सभी बहुत उमंग से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये तो सभी के लिए गर्व की बात हो गई है। और मैंने उस दिन कहा था एंजिल वालों को कि आप सभी जो छोटे हैं, नए हैं मधुबन में, वो आदर्श प्रस्तुत कर दें बड़ों के लिए, क्योंकि आप बड़ों को कुछ कहेंगे नहीं मुख से, लेकिन आपकी स्थिति और धारणाओं को देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले, ये बहुत अच्छी बात पीछे अव्यक्त बाबा ने तलहटी में पिछले सीजन में कही है कि आपके बोल से, आपके वाइब्रेशन से, आपके प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ की, अच्छे कर्म करने की, महान बनने की प्रेरणा मिले तो ये पुण्य में जमा होता जाता है। तो ये सूक्ष्म पुण्य है स्वयं पुरुषार्थ करना। तो अभी मैं पहले पूछूंगा एंजल ग्रुप से, क्योंकि वही पिछली बार थे, तो जो कार्य आप सभी को दिया गया था याद है कौन कौन सा था? स्वमान क्या था और प्रैक्टिस कौन सी थी? फरिश्तापन और पूरा अभ्यास गुण का सरलता, हल्कापन। तो जो जो समझते हैं, और एक लक्ष्य दिया गया था कि योग का चार्ट 4 घंटे तक जरूर कम से कम पहुंचना। जो समझते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए हैं, संतुष्टता की बात हम करते हैं केवल, वो जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा है, तो लगभग सभी हो गए, थोड़े से बचे होंगे, क्योंकि 4 घंटे योग तो हमारी अपनी डिमांड है, अपनी प्यास है। 4 घंटा योग तो हम रोज हजम कर जाते हैं ऐसा हम कहेंगे, और उसके ज्यादा हमें जमा करना है। अब हम इस हफ्ते का प्रोग्राम कर लेते हैं और उस पे ही वर्कशॉप करनी है सबको, इसलिए थोड़े से समय में कल की मुरली में सबसे अच्छा स्वमान हम सबके लिए था कौन सा? मैं पूर्वज हूं, और उस नशे को धारणा स्वरूप में और नशे में लाने के लिए 2 बहुत अच्छे महावाक्य थे। एक, जो पूर्वज हैं उनको, जो पूर्वज हैं, जो सबसे अच्छी बात है हम सबके लिए, जिसको याद रखने से ही सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। जो पूर्वज हैं उनके सूक्ष्म संकल्प और सूक्ष्म कर्मों को भी सब फॉलो करेंगे, अर्थात जैसा हम सोचते हैं हमारे अंदर में हम क्या सोच रहे हैं ये किसी को पता नहीं, लेकिन हमारे पीछे जो वंशावली है वो उसको फॉलो कर लेगी, वैसा ही वो सोचेंगे। हम बिल्कुल कहीं कोई छोटा भी कर्म छुप कर या प्रत्यक्ष में गलत करें तो हमारी सारी वंशावली उससे प्रभावित हो जाएगी। हम अलबेले तो हमारी सारी वंशावली अलबेली। हम में कोई ढीला संकल्प, सब में ढीला संकल्प। ये हम अनुभव भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है। वैसे ही बाबा ने कही तो सत्य है ही, लेकिन इतना सूक्ष्म रूप से प्रभाव हमारा सारी दुनिया पर पड़ रहा है। तने हैं हम, ये बाबा ने कहा। तो हम इस हफ्ते का स्वमान रखते हैं, मैं पूर्वज हूं। पसंद है सबको? बहुत ऊंचा स्वमान है, टॉप मोस्ट स्वमानों में है ये, जिसकी स्मृति हमें याद दिलाती है कि हम छोटे नहीं हैं। आदि पिता जैसे, मास्टर आदि पिता, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, किसी मुरलीम बाबा ने हम सबको मास्टर भगवान भी कहा है, आपको याद हो। तो हम पूर्वज हैं और हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बात बाबा ने कही है जो हमारे इस नशे को बहुत ऊंचा उठा देती है कि जो पूर्वज हैं प्रकृति और माया, बोलो, और कुछ, एक और महावाक्य से पहले, प्रकृति और माया उनके ऑर्डर को न माने ये हो नहीं सकता, बहुत बड़ी चीज हो गई, इसलिए नमस्कार करके विदाई ले लेंगे। तो अगर हम पूर्वज के नशे में रहते हैं तो धीरे हमें अनुभव होने लगेगा कि प्रकृति और माया हमारे ऑर्डर को स्वीकार करने लगी। इस हफ्ते पूर्वज के नशे में रहते हुए हम एक विशेष बात का अभ्यास करेंगे कि अपने अंदर आया हुआ कोई भी संकल्प हम युद्ध करके नहीं हटाएंगे, ऑर्डर से हटाएंगे। ठीक है, हम पूर्वज हैं, हम उस संकल्प को ऑर्डर देंगे जाने का, और क्योंकि हम पूर्वज हैं तो वो बाध्य है हमारे ऑर्डर को मानने के लिए। ये एक नया प्रयोग हम सभी दिन में थोड़ा लक्ष्य रख लें, 3 बार या 5 बार करके अनुभव करें। संकल्प तो कोई ना कोई आता ही है, हम माया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, माया कोई काम क्रोध की नहीं, और भी कई डिस्टर्ब करने वाले संकल्प संगठन की ओर से, कार्य की ओर से आते हैं, उन्हें ऑर्डर से हटाना, ये नया अनुभव सब करेंगे इस पूर्वज के स्वमान के साथ। अभ्यास, पीछे हमने फरिश्तेपन का एक अभ्यास दिया था, सबको याद है, प्रकृति को पावन करने का, उसमें आप एक चीज जोड़ लें, उसमें ये अभ्यास था, हम रिपीट कर देते हैं जरा सा उसको, कि मैं इस देह में फरिश्ता हूं, अपने फरिश्ते स्वरूप को बहुत स्पष्ट देखें कि मैं हीरा लाइट के शरीर में विराजमान हूं, इस शरीर के अंदर एक प्रकाश का शरीर है जिसमें मैं बैठा हूं, उसे चारों ओर वाइब्रेशन फैलते हैं लाइट और माइट के, और स्वमान था मैं परम पवित्र हूं, तो मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं, इसका अभ्यास था, और इसको 5 तरह से अभ्यास करना था। याद है कि हम फरिश्ते बनकर आकाश में जाते हैं और वाइब्रेशंस फैला के आकाश को पावन करेंगे, हम फरिश्ते बनकर धरती पे खड़े हैं, चल रहे हैं, और ये अनुभव करेंगे कि हमारे पैरों से प्योर वाइब्रेशंस निकल के सारी धरती में फैल रहे हैं, हम परम पवित्र फरिश्ते खड़े हैं और अभ्यास करेंगे कि हमारी आंखों से पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर अग्नि को पावन कर रहे हैं, हम सागर के किनारे खड़े हैं और अपने वाइब्रेशन से जल को पावन कर रहे हैं, इस तरह के ये अभ्यास थे। वायु हमें टच करके जा रही है, पावन होके इधर जा रही है। अब इसमें एक चीज और जोड़ देंगे, अच्छा लगा आप सभी को ये अभ्यास, बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे योग को बहुत सुंदर कर देता है, ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। कभी हम समय लेके संकल्प शक्ति पर चर्चा करेंगे कि हमारा संकल्प किस तरह हर चीज का निर्माण करता है। आप में से जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी, मैं उन्हें एक छोटा सा संकल्प दे देता हूँ, आप चिंतन करना उस पर अपने जीवन में, जो आपको बहुत नशा देगा। प्रताप भाई, बहुत काम का एक संकल्प भी अभी हम लोगों के पास आ गया है, जिन्होंने साइंस पढ़ी वो जानते हैं, केमिस्ट्री वाले विशेष, कि सोलिड को लिक्विड और गैस में बदल दिया जाता है, बर्फ को पानी में, पानी को भाप में, इसका उल्टा भी किया जाता है, भाप को पानी में, पानी को बर्फ में। ऐसे आइंस्टीन ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया कि मैटर को, पदार्थ को एनर्जी में बदला जा सकता है। तो हमारे वहां एक लड़के ने, जिसने अभी एमटेक किया है, उसने एक संकल्प दिया है वैज्ञानिकों को, अभी शुरू किया है, कि अगर पदार्थ को एनर्जी में बदला जा सकता है तो एनर्जी को पदार्थ में भी बदला जा सकता है। इसके बारे में साइंस ने आज तक कुछ नहीं सोचा है। अगर एनर्जी को पदार्थ में बदल दिया जाए तो मनुष्य अपने संकल्प की एनर्जी से ही बहुत कुछ निर्माण कर सकता है, और करता तो है। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था एक, कि लोगों ने ऐसा लिखा है कि सामने वाला पहाड़ आपके सामने जो दिखाई देता है, अगर आप संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये संकल्प करो کہ یہ پہاڑ 10 فٹ پیچھے کھسک جائے اور آپ کو اس میں کوئی سنسے نہ ہو کہ نہیں کھسکے گا, یہ کھسکے گا یا نہیں, تو پہاڑ 10 فٹ پیچھے کھسک جائے گا. اگر پورن وشواس اور سنکلپ شکتی اتنی بڑی چڑی ہو, یہ ہے کہ انرجی پدارتھ میں بدلی جا سکتی ہے. تو ایک بہت بڑے سدھانت کی اور ہم چلیں گے بھوش میں, جس سے ساری سائنس اس سائلنس کے سامنے جھک جائے گی. اسی سے آدھار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم سوچیں گے وہی سوروپ نرمت ہو جائے گا. تو اب ایک اسی پرسارتھ کو آنندکاری بنانے کے لیے ہم ایک ابھیاس اور جوڑ دیتے ہیں. اس میں نیا آتا رہے تو پرسارتھ کرنے میں امنگ رہے گا کہ ہمارا فرشتہ سوروپ ہمارے سامنے آکاش میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ہم سنکلپ سے اپنے فرشتے سوروپ کی رچنا کریں, اس کو سامنے بہت اچھی طرح دیکھیں اور ایسا ایک درس پرستت کریں کہ نیچے کے بہت سارے بھگت بھی اسے دیکھ رہے ہیں, ساکشاتکار کر رہے ہیں اس کا. اور یہ فرشتہ میں ہوں, اور یہ فرشتہ دھیرے دھیرے نیچے کو آتا ہے اور میرے تن میں پرویش کر جاتا ہے. میں ہوں یہ, اور پھر میں اس سے نکل کر پھر وہاں چلا جاتا ہوں. یہ 4-5 بار ابھیاس کر کے پھر آپ یوگ کریں گے. یوگ تو وہی ہے, آتما سمجھ بابا کو یاد کرنا, یہ سب اس کے ہیلپنگ پوائنٹس ہیں, مددگار ہیں, جو ہمارے یوگ کو ہماری بدھی کو استھر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور اچھا پرسارتھ کرنے کے لیے اتسک ہیں وہ اگلے ہفتے روز ہر گھنٹے میں ایک بار آدھے منٹ کے لیے سوئم کو دیہ سے نیارا محسوس کریں, کیول آدھا منٹ. بس یہ 2 ابھیاس رہیں گے اور اگلے ہفتے ہمارا لکش رہے گا 5 گھنٹے. ٹھیک ہے, سویکار ہے؟ سویکار ہے نا. اب ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور 8 تک لے چلیں گے بہت جلدی. 5 گھنٹے جو اسی کرم سے آگے بڑھتے رہیں گے ان کو 8 گھنٹے تک پہنچنا کٹھن نہیں ہوگا, اور 5 نیموں کا سبھی پالن کرتے رہیں گے. تو اب ہم ورک شاپ کریں گے, سنکشپت ورک شاپ آپ سبھی کریں گے. اور ورک شاپ کا ٹاپک کیا رکھیں گے دیواکر بھائی؟ مجھے ایسا اس دن ہم نے 10 پوائنٹ نکالی تھی انجل کے گروپ میں کہ 10 دھارناؤں کی پوائنٹ, اس میں 2 باتیں اور جوڑ دینی ہیں, نرہنکاریتا اور سہنشیلتا, جس پر دادی نے بہت دھیان کھچایا تھا ابھی نزدیک میں. تو آج ہم ورک شاپ کر لیں نرہنکاریتا پر. اور ہماری ورک شاپ کیول یہاں تک نہیں ہوگی. آپ اب کیسے ورک شاپ کریں گے؟ تھوڑا سا ہنٹ لکھ لیں کہ اہنکار منوش کے اندر کیوں بڑھتا ہے, اہنکار کے سوروپ کیا کیا ہیں, کس کس چیز کا اہنکار, اہنکار کیوں بڑھا ہے, اس کے بھن بھن پرکار کیا ہیں, ان بھن بھن اہنکار کے سوروپوں کو گیان کے کن کن باتوں سے نشٹ کیا جا سکتا ہے, ان 3 باتوں میں ورک شاپ کریں گے سنکشپ میں. لیکن 4th بات ہوگی بالکل سوئم کے لیے, جو پریکٹیکل 1 ہفتہ سوچنتن کر کے سبھی اپنی پریکٹس میں لائیں گے. ہر ایک نوٹ کرے گا کہ میرے اندر کس کس طرح کا اہم ہے, اہم اور میں پن, وہ کرم میں کہاں آتا ہے, ویوہار میں کہاں آتا ہے, کہیں بدھی میں آتا ہے, کہیں بل کا آتا ہے, کس طرح کا اہم میرے پاس کام کرتا ہے دنچریا میں روز. کوئی مجھے کچھ کہہ دیتا ہے, مجھے فیلنگ آتی ہے, وہ میرا اہم ہے. کوئی مجھے سمان سے بات نہیں کرتا تو مجھے برا لگتا ہے, وہ میرا اہم ہے. تو ہر ایک ویکتیگت روپ سے, چاہے ورک شاپ میں تو اس کی چرچا نہیں ہو سکتی, لیکن سوچنتن کر کے 5 باتیں اپنے جیون کو دیکھ کر اپنے پاس نوٹ کرے گا اور ان کو ہٹانے کا اس ہفتے ابھیاس کیا جائے گا.